તારીખ 11/9/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 580 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32A
અધ્યાત્મ છે દ્રવ્યાનુયોગ મેં દ્રવ્યાનુયોગ કે આગમ કે દ્રષ્ટિકોણ છે और अध्यात्म मैंने साधना के दृष्टिकोण से आराधना के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आया है। प्रश्न उठाया है ए परिणामी का अर्थ क्या, क्या प्रश्न उठाया है ए परिणामी का अर्थ क्या, क्या आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है। दो प्रश्न उठाए हैं मैंने, एक प्रश्न का स्पष्टीकरण है, दूसरा प्रश्न कि आप आत्मा को अपरिणामी कहते हो तो क्या आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है, ऐसा प्रश्न उठाया है। तो ये विषय हुआ, प्रश्न तो है द्रव्यानुयोग के विषय में कि द्रव्य पर्याय का की कौन सी व्यवस्था है, किस प्रकार का वस्तु स्वरूप है, ये हम जानना चाहेंगे। समाधान करते हैं, अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहा, सर्वथा नहीं है सो बात नहीं है, पर्याय अपने स्थान में है, त्रिकाली ध्रुव अपने स्थान में है। और द्रव शब्द से हमें प्रकरण अनुसार दो प्रकार के अर्थ समझने चाहिए। द्रव का एक अर्थ प्रमाण का विषयभूत पदार्थ भी होता है, जिसको हम द्रव गुण पर्याय समेत पदार्थ को भी द्रव कह सकते हैं, पर उसी पदार्थ का त्रिकाली ध्रुव अंश है उसको भी द्रव कहने में आया है। तो जब द्रव की बात चलती हो तो ये ध्रुव द्रव की बात चलती है या प्रमाण का विषयभूत गुण पर्याय वाला द्रव की बात चलती है, ये बात हमें ध्यान में नहीं होवे तो कोई कहना चाहेंगे कुछ और हम समझेंगे कुछ और, ये बात हो जाएगी। इसलिए द्रव्य शब्द का प्रकरण अनुसार दो अर्थ होता है, जहां जो बात चलती हो वहां समझनी चाहिए। तो यहां जो उत्तर दिया है ये प्रमाण के द्रव्य का उत्तर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अपरिणामी का प्रश्न जब पूछ रहे हैं पर आत्मा अपरिणामी है ऐसा जब बात चलती है तो प्रमाण वाला जो द्रव्य है उनको ख्याल में है, जिसको पूछना है उसको तो ख्याल में है कि जो सत लक्षणम द्रव्यम और उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, सत है अस्तित्व है वो सभी द्रव्य का छों द्रव्य का लक्षण है, और वो सत कैसा है कि उत्पाद वही ध्रुव युक्तम है। तो ये बात तो प्रसिद्ध है और समाधान में भी ये बात कही कि ये बात ठीक है, अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है, मैंने प्रमाण वाला द्रव्य में भी पर्याय नहीं है ऐसा हम अपरिणामी द्रव्य नहीं कहते हैं। अर्थात जो परिणमनशील पदार्थ है उसको हम अपरिणामी नहीं कहते हैं। क्या
दो प्रकार का हो गया,
द्रव शब्द का अर्थ दो हो गया, जो प्रमाण का विषय भूत है द्रव ऐसा भी द्रव शब्द का अर्थ है, और इसका एक अंश जो ध्रुव है उसको भी द्रव कहने में आता है, क्योंकि ये द्रव का त्रिकाली स्वरूप है, त्रिकाली स्वभाव है, इसलिए तो दोनों अपने अपने अपेक्षा से बराबर है। द्रव दो प्रकार का नहीं है, द्रव शब्द का अर्थ दो प्रकार से होता है, जो प्रमाण का है द्रव, वो अपने एक प्रकार का है। जो ध्रुव है वो भी अपने एक प्रकार का है। उसमें दो प्रकार नहीं है, ध्रुव में दो प्रकार नहीं है, प्रमाण में भी दो प्रकार नहीं है। ऐसा
क्या माने थे?
दोनों को समझे जैसा है वैसा, जहाँ जो बात चलती हो ऐसा उनको दोनों को समझे। पर अवलंबन लेना हो तो त्रिकाली ध्रुव द्रव का लेना, प्रमाण का अवलंबन नहीं लेना।
जब ध्यान करें तब किस स्वरूप को स्वरूप हमें रखाएगा?
त्रिकाली को ध्रुव स्वरूप है। ध्रुव स्वरूप को पहचाने और पहचानने के बाद ध्यान करे। बिना जाने पहचाने ध्यान किसका होगा? हाँ तो पहले
क्या कुछ स्वरूप है उसका?
हाँ हाँ, उसका पहचान सकते हैं। जो स्वरूप है जैसा है वैसा उसको पहचान सकते हैं। और पहचानने के लिए भी सत्शास्त्रों में, समय सार आदि में बहुत व्यवस्थित रूप से आचार्यों ने बात कही है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है। ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूपी आत्मा की, ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है। वो त्रिकाली की पहचान होती है। देखिए, हमारे जो परिणाम चलता है उसका हमें अनुभव है। इस अनुभव से हम परिचित भी है। हमारे पर्यायों से तो हम परिचित है। अब हमने कोई नहीं वो समझी ऐसी कोई चीज हमारे में है, तो हमारा त्रिकाली मूल स्वरूप कैसा है वो हमने नहीं समझा है, वो हमें पता नहीं है कि वास्तव में मूल रूप में असल हमारा रूप क्या है, असली रूप क्या है। ये बात हमने अनंत काल में कभी नहीं समझी। तो उनकी पहचान करना है, जानकारी करके, परिचय करके पहचान करना है। परिचय बिना पहचान हो सकती नहीं। आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचयी होना, ऐसा श्रीमद् जी का एक वचन है। क्या? आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचयी होना, इससे पहचान होगी। और पहचान होगी तो क्या होगा कि वो ऐसा वो अद्भुत पदार्थ है, इतना अनंत महिमावंत है कि उसमें एकाग्र होने का हमारा उत्साह, हमारा उद्यम, हमारा पुरुषार्थ जागृत हुए बिना रहने वाला नहीं है। हमें आत्मा की पहचान हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई सबूत मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिलता है कि जो सही पहचान हुई हो तो हमारा अंतर्मुखी अनुभव करने के लायक पुरुषार्थ की जागृति हुए बिना नहीं रह सकते। जिसको गुरुदेव कहते हैं चैतन्य वीर्य की स्फुरणा, ये हमारे जो ग्रंथ है ना परमागम सार, उसमें नहीं होगा, उसमें वो बात लिया नहीं है, नहीं है इस परमागम सार नहीं है। तो ग्रंथ पढ़े हैं कोई भाई ले आए तो कहते हैं, तो उसमें गुरुदेव ने वो बात कही है कि पहचान होती है तो आत्मिक पुरुषार्थ की स्फूर्णा जागृति आए बिना नहीं रहती। एक नई स्फूर्ति आती है। क्या? पहचान होने से एक नई स्फूर्ति आ जाएगी हमारे में। यही सबूत है कि पहचान हुई है। और पहचान नहीं हो, नहीं हुई हो, और हमने शास्त्र के माध्यम से या ज्ञानी को सुनने से जाना हो कि आत्मा ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, विभाव ऐसा है, द्रुगुण पर्याय ऐसा है, लेकिन पहचान नहीं हुई हो तो हमारे में पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, उतना ही नहीं किंतु हमें ये लगेगा,
पहचान की
परिचय करना, ये तो कहा जैसे हम आप काय का बिजनेस करते
हैं?
एजेंसी है। अच्छा, किस चीज की है? दवाइयों की। जब तो वहाँ पहचानने का कोई सवाल नहीं, ट्रेडमार्क से चलता है यार। कपड़े होते हैं, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, मूंग होते हैं, और चाय होती है, शक्कर होती है, हीरे होते हैं, सोना होता है, सब पहचान करके खरीद किया जाता है। क्या तो सोने को बार बार कसौटी पर घिसेंगे परिचय करने के लिए, कपड़े को बार बार देखते रहेंगे, इसके तार को, इसकी बुनाई को, सभी प्रकार के इनकी क्वालिटी के जितने जितने फैक्टर हैं वो देखते रहेंगे बार बार। जब ये बात प्रैक्टिकल ज्ञान में समझ में आएगी कि ये कपड़ा ठीक है, अच्छा है या क्वालिटी में अच्छा नहीं है, हल्का है, ऐसे परिचय से आदमी का भी परिचय करने से पता चलता है। क्या आदमी का परिचय कैसे करना? जैसे आपके ऑफिस में कोई नए आदमी को आपको नौकरी पे अपॉइंटमेंट देना है, क्या आपको नौकरी में रख लेना है, आपने पहले तो इनके विषय में लिखित जानकारी मंगाई, आप क्या पढ़े हो, किस उम्र के हो, किस जाति के हो, पहले कहाँ सर्विस किया था, कितना अनुभव था, क्या क्या जानते हैं, दो पांच बातें जो पूछा है वो लिख के देता है आदमी। लिख के देता है, इसके बावजूद भी आप इसका इंटरव्यू लेते हो, तो ये दो बातों से, परोक्ष परिचय और प्रत्यक्ष परिचय से, आपको कुछ मात्रा में अगर विश्वास आता है तो आप उनको नौकरी पे रख लेते हो। फिर भी नया आदमी है तो वो जैसे जैसे काम करके बताएगा वैसे वैसे इनकी कार्यक्षमता का परिचय आएगा, कहने से लिखने से नहीं आता, ये तो काम करके देगा तब आपको पता चलेगा कि ये काम ठीक तरह से कर सकता है या चुक करता है या उनको नहीं आता है, जो भी बात है वो परिचय से ही पता चलेगा। ऐसे हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में एक ज्ञान सामान्य प्रवाह चल रहा है, विशेष ज्ञान में तो नई नई आकृति की जानकारी होती है, लेकिन सामान्य ज्ञान का एक प्रवाह चल रहा है धारावाहिक। बस ऐसा एक रूप ज्ञान के सदृश एक रूप ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान सामान्य में वेदन भी है और उसी सदृश इस ज्ञान सामान्य में प्रत्यक्षता भी है, निर्विकल्पता भी है, निराकुलता भी है, जो भी प्रयोजनभूत मुद्दे चाहिए वो सब इधर है। जब इसका परिचय होता है कैसे, वेदन के अनुभवन से, जब इसका बार बार वेदन पर हमारा उपयोग जाता है, मैंने ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य पर जाता है, तब सन्मुखता आती है और उसमें परिचय बार बार ऐसे प्रयोग से परिचय आता है। परिचय होने से जैसा अनंत महिमावंत आत्म स्वभाव है वैसा हमें लगने लगता है। क्या विचार में नहीं आता है, जैसा अब लगता है कि मैं फलाना मनुष्य हूँ, और पुरुष होता है उसको लगता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री होती है उनको लगता है कि मैं स्त्री हूँ, लगता है, वो विचार होता है क्या? लगता है, महसूस होता है। वैसे मैं एक आत्मा हूँ ज्ञान स्वभावी, जैसा परमेश्वर पद है ऐसा लगने लगता है, साक्षात सिद्ध पद स्वरूप लगने लगता है, उसी की नाम पहचान हुई। जब ऐसे अनंत गुण का निदान हम स्वयं है, हम खुद ही है, तो इनका अवलंबन और आधार से हमारे परिणमन में पुरुषार्थ की जागृति हुए बिना रहने वाली नहीं, ऐसा जो होता है तो यही दर्शाता है कि पहचान हुई है। और जिसको पहचान नहीं हुई उसको ये समस्या होगी कि अरे हम समझते तो सब, जितनी बातें शास्त्र में पढ़ते सब समझ लेते, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता कि जिससे हमें अनुभव हो। अनुभव का पुरुषार्थ करने चाहते हैं तो भी नहीं उठता है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं हुई है इसलिए। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है कि पहचानने में बहुत सी चीज रही है, और बिना पहचान किसी को अनुभव हो ऐसा कभी बनने वाला नहीं है, क्योंकि किस में एकाग्र होगा? बिना जान पहचान एकाग्रता किस में करेगा, ध्यान किस में करेगा? कहते हैं एकाग्रता के लिए अट्रैक्शन चाहिए। क्या? आकर्षण चाहिए। तो सहज रूप से एकाग्रता आ सकती है, वरना कृत्रिम प्रयास से एकाग्रता करने चाहे तो ऐसे एकाग्रता हो सकती नहीं है। क्योंकि एकाग्रता करने में उतना हमारा दिल नहीं है, वो करना पड़ता है, करने का हम कोशिश करते हैं, तो ये कृत्रिमता इसमें पैदा हो जाती है। और सहजता में कृत्रिमता का अभाव है। हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें हमें एकाग्रता होने का भाव बहुत उत्साह से आता रहे और सहज एकाग्रता हो जाए। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य में सर्वथा पर्याय नहीं है, इसको हम अपरिणामी इस तरह से तो नहीं कहते जी। लेकिन जब हम अपरिणामी की बात करते हैं तो पलटनशील परिणाम स्वभावी पर्याय को गौण करके, पलटने वाली जो समय समय पर पलटने का जिसका स्वभाव है उसको पलटनशील कहते हैं, या परिणमन स्वभाव वाली पर्याय कहते हैं, उसको गौण करके, उसकी गौणता करके, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, ऐसे ध्रुव त्रिकाली द्रव्य और ध्रुव पर्याय को लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये ध्रुव पर्याय तो, ध्रुव द्रव्य तो कहा, एक बात और कही, ध्रुव पर्याय की भी यहाँ बात की है। देखिए कि ध्रुव पर्याय का विषय एक ही जगह हमारे आगमों में आता है। संकेत कोई अलग अलग शास्त्र में आते होंगे, लेकिन स्पष्ट बात है पूजित पंचम भाव परिणति जिसको कहा नियम सार की 15 गाथा में, उसको कारण शुद्ध पर्याय वहां कही, पूजित पंचम भाव रूप कारण शुद्ध पर्याय, उसको ध्रुव कही, ध्रुव पर्याय कही, उसको शुद्ध पर्याय कही और उसको कारण शुद्ध पर्याय कही। क्यों? कि शुद्ध कार्य के वो अवलंबन में आती है, वो अवलंबनभूत कारण होने से उसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आई है। ये विषय ज्यादा सूक्ष्म है कि कारण शुद्ध पर्याय क्या है। पहले तो हमारी ये आदत बनी रही है कि सभी शब्द के अर्थ हम कुछ फिक्स कर लेते हैं हमारे अभिप्राय में, हमारे दिमाग में, जब दूसरे अभिप्राय से वही शब्द का प्रयोग होता है तो फिर हम उलझन में पड़ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, कोई मेल नहीं बैठता है, हमारी समझ में कोई मेल नहीं बैठता है। इसलिए हमने पर्याय शब्द का अर्थ ऐसा समझ रखा है कि जो उत्पाद व्यय हुआ करे उसी का नाम पर्याय। ऐसा नहीं है, पर्याय शब्द के बहुत अर्थ हैं। जो अन्य विकल्प हो, अल्टरनेटिव को भी पर्याय कहते हैं, कि इसका दूसरा पर्याय कौन है, मैंने दूसरा इलाज कौन है, क्या उसको भी पर्याय कहते हैं। पर्याय शब्द के प्रकरण अनुसार जो अर्थ होता हो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ तो टीकाकार मुनिराज जो पद्म प्रबलधारी देव है नियमसार के, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि मैं पर्याय का यहाँ कौन सा अर्थ करता हूँ। वहाँ वो लिखते हैं कि परिसमंतात भेदम एति इति पर्यायः, उन्होंने पर्याय को वहां डिफाइन किया है, उसका व्याख्या डेफिनेशन दिया है कि हम पर्याय की यहाँ कौन सी बात कैसी बात करते हैं। परिसमंतात मैंने चारों ओर से भेदम एति एति मैंने गच्छति, जो भेद को प्राप्त होती है उसका नाम पर्याय है। तो यहाँ कहेंगे कि आत्मा जो ध्रुव है वो अनादि अनंत है, उसमें अनंत काल तो भूतकाल का है जो व्यतीत हो गया है, और आने वाला अनंत काल भविष्य का है जो अभी नहीं आया है। वर्तमान एक समय है, वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल कितना है? एक समय का है। तो त्रिकाली का जो वर्तमान एक समय है यही अवलंबन का विषय होता है। क्या वही अवलंबन का विषय वर्तमान होता है? भूतकाल के पदार्थ का अवलंबन लिया नहीं जा सकता, और भविष्य का भी अवलंबन तो जो उपस्थिति नहीं है, दोनों उपस्थित नहीं है, न भविष्य उपस्थित है हमारे सामने न भूतकाल उपस्थित है, इसलिए इसका अवलंबन वास्तव में लिया नहीं जाता। एक समय का भेद का ज्ञान नहीं कर सकते, उसको भेद पाड़ के ज्ञान नहीं कर सकते, लेकिन क्या वर्तमान का अवलंबन नहीं ले सकता? इसलिए क्या
समय ख्याल में तो अवलंबन कर लेगा?
नहीं, एक समय का भेद भी वहां तो नहीं पाड़ना है क्या? वहां एक समय का भेद को देखना नहीं है, लेकिन अभी मुझे मेरा अवलंबन चाहिए उतनी बात है। हर वर्तमान है वो है क्या नहीं है? वर्तमान है क्या नहीं है? तो मैं अभी ही ऐसा हूं, बिना किसी के अभी ही पूर्ण हूं। क्या वो अभी मैंने वर्तमान, उसमें एक समय, दो समय, असंख्य समय, एक आवली, उसका कोई हमें प्रयोजन नहीं है। वो गणित हमको नहीं आवे तो उसका कोई हमें प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन की बात कितनी, बस उतना हमें समझना है। क्या
अनंत समय भी हुआ तो भी वो वर्तमान है?
हाँ, वर्तमान है। संगीत सीखने वाले को मात्रा का पता होता है, लेकिन जिसने मात्रा नहीं सीखी और कोई गाता है बजाता है, इससे पे बोल देता है कि वही राग चलता है, ये भैरव चलता है, ये शार्दुल विक्रीड़ी चलता है, ये वसंत तिलका चलता है, बोलने से सुनते ही समझ लेता है, तो उसको कोई मात्रा का ज्ञान नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि मात्रा का ज्ञान हो तभी पहचान हो। इसलिए एक समय पकड़ सके तो ही अवलंबन आवे, ऐसी बात नहीं है। हम तो वर्तमान में है कि नहीं है, हमारी मौजूदगी वर्तमान में है कि बुद्ध भविष्य में है, कि वर्तमान में अनुभव की जाती है, बस उतना प्रयोजन है हमारा। तो कहते हैं कि त्रिकाली का जो वर्तमान है, हर समय, हर वर्तमान में जो त्रिकाली वर्तता है, मैंने रहता है, रहता है मैंने वर्तता है, उस वर्तमान त्रिकाली की वर्तना स्वरूपाकार है। क्या है? ध्रुवाकार है, स्वरूपाकार है, उतना ही नहीं स्वाकार है। क्या? स्वाकार है। ये ऐसा स्वयं के स्वरूप का अवलंबन आता है उसमें बहुत। इसने एक दिन लिया था यहाँ के स्वाध्याय में, तो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या? त्रिकाली तो त्रिकाली बहुत जबरदस्त पदार्थ है, लेकिन इसका एक वर्तमान है, तो ये समुद्र की ऊपर की सपाटी है कि जहाँ बड़े बड़े लोहे के जहाज तिरते हैं हजारों टन के, पानी की सपाटी में वो ताकत है कि वो उसको ऊपर झेल रखते हैं, हजारों टन के लोहे के जहाज को झेल के रखता है, ऐसे उसमें ताकत है। वर्तमान में क्या ताकत है त्रिकाली के वर्तमान में, कि अगर ज्ञान के पर्याय इसके सन्मुख अंतर्मुहूर्त मैंने एक घंटा भी एकाग्र रह गई तो केवल ज्ञान फट जाएगा इसमें से। क्या होगा? जिस मुनि की पर्याय होती तो मुनि के नीचे के गुण स्थान वाले को तो उतनी स्थिरता हो ही सकती नहीं, चाहे लाख उपाय करें। लेकिन जिसकी तीन कषाय टूट गई हो, जिनकी तीन कषाय का अभाव हुआ हो, चौथा संजलन भी बहुत मंद अति मंद हुआ हो, यानी ऑब्स्टेकल सब मिट गए हो, प्रतिबंध कारण छूट गए हो, और फिर वो अपने में इस कारण से ध्यान लगा सकते हैं, तो केवल ज्ञान पैदा होने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए कितना समय चाहिए? एक ही घंटा। एक घंटे में तो सर्वज्ञ हो जाता है आत्मा। लेकिन शर्त वो है कि मुनिपना तक की शुद्धि पहले होनी चाहिए। सबको ऐसे एकाग्रता हो सकती नहीं। तो काम तो केवल ज्ञान का काम कितने का है? अंतर्मूर्त का, दीर्घ अंतर्मूर्त उसको कहते हैं। लघु अंतर्मूर्त तो असंख्य समय का होता है। ये दो घंटा, ये दो घड़ी वाली जो बात है, दो घड़ी एकाग्र हो जाता है, वो एक घंटे से कुछ अधिक समय है। 48 मिनट तो कुछ कम हो गया, 12 मिनट कम हो गया, तो एक घंटा भी पूरा नहीं रहा। दो घड़ी एकाग्र हो जाए मुनिराज, केवल ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा पद में आ जाएंगे, अरिहंत पद में आ जाएंगे। इस दो घड़ी में वो आठवें से लेकर 12वें गुण स्थान तक की श्रेणी को चढ़ जाते हैं ध्यान में, शुक्ल ध्यान में। तो क्या कहा कि वर्तमान पर्याय को गौण करके, मैंने वर्तमान उत्पाद व्यय वाली अवस्था पर से लक्ष्य हटा करके, त्रिकाली में भी मैं वर्तमान परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, वर्तमान में ही। वो वर्तमान में क्या कहना चाहते हैं कि ध्रुव वर्तमान लेना चाहते हैं, जिसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आई है। उसको लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन और स्वानुभव की प्राप्ति होती है। प्रथम एकाग्रता में, यानी प्रथम ध्यान में सम्यक दर्शन और स्वानुभव की प्राप्ति होती है। द्रव्य पलटता नहीं है, पर्याय पलटती रहती है। क्या कहते हैं? पर्याय नहीं पैदा होती है, द्रव्य वही का वही रहता है, नया द्रव्य पैदा नहीं होता। ये हमारे पुद्गल के परिणामों से हम समझ सकते हैं कि समुद्र पर बहुत गर्मी के दिनों में क्या होता है, बाष्पीभवन होता है, पानी हवा में चला जाता है, फिर बादल बनते हैं इसके। तो पानी तो प्रवाही था, वही परमाणु हवा रूप हो गए, वही फिर पानी होकर गिरने लगता है। परमाणु की अवस्था बदलती है, परमाणु तो वो का वो रहता है। जिसने साइंस पढ़ा हो उसको तो पता होगा कि पुद्गल का आता है कि नहीं, घन, प्रवाही और वायु, तीन अवस्था होती है पुद्गलों की। तीन अवस्था होती है, घन, प्रवाही और वायु। तो अवस्था बदलती है, पदार्थ नहीं बदलता। जैसे हम कहेंगे कि हम पहले बचपन में वहां रहते थे, फिर इस गांव छोड़ करके हम धंधा करने के लिए सिटी में आए, और हमारी युवान अवस्था में हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत परिश्रम करके इतना कमाया, अब बूढ़ा हो गए तो अभी कोई काम करने की शक्ति नहीं रही। तो हम तीनों अवस्था में हम थे, हमारी तीन अवस्था हुई, हम तीन हुए नहीं, हम तो वो के वो हैं। तीन अवस्था होने के बावजूद भी बाल, युवा, वृद्ध, ऐसे तीन अवस्था किसकी होती है? एक की होती है। एक की तीन, एक भी उसमें और तीन भी उसमें, एक अनेक दोनों एक ही पदार्थ में पाया जाता है। एक भव की बात हुई, वैसे अनेक भव में वो का वो आत्मा होता है। ये सर्प काटता है, क्यों? उसको क्रोध की प्रकृति लेकर आया है दूसरे भव में। क्रोध के प्रकार की प्रकृति वो लेके आया है। तो दूसरे भाव में क्रोधी था इसका सबूत यहाँ मिलता है। चींटियां दो तरह की होती है, लाल होती है वो काटती है, काली है वो नहीं काटती है। क्यों? दोनों चींटी है लेकिन उसकी प्रकृति ऐसी नहीं है, गुस्सा करने की इसकी प्रकृति नहीं है, ये पूर्व संस्कार है। हमारे यहाँ भी ये जुड़वा बच्चे होते हैं ना, दो एक साथ जन्म पाते हैं, दोनों भाई हो, एक माँ बाप है और एक ही रसोई घर में से खाते हैं, एक ही वातावरण में उसका उछेर होता है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। बाप तो होता है न्यायाधीश, जज होता है, बेटा पागल हो सकता है, और बाप पागल भी हो सकता है और बेटा सुप्रीम वाली घड़ी आती थी ना, जैसे इधर 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 उधर चलता ही रहता है, जैसे सेकंड कांटा घूमता रहता है वैसे। तो उसी पर कोई नजर को स्थिर करना चाहे तो उसको नजर को भी घुमानी पड़ेगी ऐसे ऐसे, क्योंकि जिसका अवलंबन लिया है वो स्थिर चीज नहीं है। तो परिणाम का ये विज्ञान है कि अगर उसको कहीं एकाग्र होना है तो सामने वाला पदार्थ भी स्थिर होना चाहिए, जब ही परिणाम में स्थिरता आएगी। स्थिरता मैंने परिणाम तो उत्पाद वे रूप है, लेकिन चंचलता का अभाव उसको स्थिरता कहते हैं। जिसको परिणाम को अचंचल या निश्चंचल करना हो उसको स्थिर निश्चंचल पदार्थ का अवलंबन लेना चाहिए, वो सीधी सादी बात है। इसलिए हमारे ध्रुव आत्मा है वो स्थिर पदार्थ है, अनादि अनंत स्थिर है, इसके आश्रय से परिणाम में से चंचलता उठ जाती है। चंचलता भी एक मलिनता का कारण है। क्या? राग तो मलिन स्वरूप है, दूसरे पदार्थ का अवलंबन लेने से राग होता है, नियम से। गुण भेद का अवलंबन लेने से राग होता है, नियम से। परिणमनशील पर्याय का अवलंबन लेने से राग होता है, नियम से। और चंचलता से भी राग होता है। इतने राग मलिनता होने में इतने मुद्दे हैं, जितने जितने मलिनता होने के कारण है, ये सब दुख के कारण है। मलिनता दुख सहित होती है, अगर दुख मिटाना हो तो ये सभी मलिनता के कारण को दूर करना चाहिए, तो शुद्धि होगी और शुद्धि में सुख शांति होगी। इसलिए हमारे आगमों में जो ध्यान का प्रकरण चला है ये यही कारण से चला है कि मुनिराज का व्यवहार तो ऐसा है कि उनको कोई संसारिक प्रवृत्ति तो होती नहीं, न पांच इंद्रिय के विषय होते हैं, न कोई संसार के धंधा व्यापार व्यवसाय की कोई कारोबार होता है। जब उनको पंच महाव्रत समिति गुप्ती होती है फिर उनको मलिनता जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी? तो एकाग्रता रूप ध्यान से निकलेगी। इसलिए ध्यान को चारित्र का अंग बताया गया है। पलटते हुए द्रव्य के आश्रय से स्थिरता हो नहीं सकती और स्थिरता बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अकेला सम्यक दर्शन हो ऐसा किसी को नहीं बनता, अकेला सम्यक ज्ञान हो ऐसा भी किसी को नहीं बनता, और अकेला सम्यक चारित्र हो ऐसा भी नहीं बनता। तीनों का एकत्व होता है उसी को ही मोक्ष मार्ग कहने में आया है। और होता हो तो तीनों साथ में ही होता है, एक हो या दो हो ऐसा कभी बनता नहीं है। इसलिए जो पलटती ही रहती है, जो पर्याय पलटती ही रहती है, उसका लक्ष्य छोड़, उस पर से लक्ष्य छोड़ देना। वो तो वहां तक कहेंगे कि अनुभव हुआ अनुभव नहीं हुआ, ऐसा लक्ष्य करने लायक भी नहीं है। दूसरा तो लक्ष्य करने लायक नहीं है, किंतु अनुभव में पर्याय में होता है तो उसका भी लक्ष्य तुम्हें छोड़ना होगा। और ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है, उसका लक्ष्य कर। जो ध्रुव है, अपरिणामी है, स्थिर तत्व है, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य तत्व है, हमारा मूल स्वरूप है, वो एक ही सारभूत है। अवलंबन करने के लिए तो एक ही सारभूत है, ये कहा है अपने इस दूसरे खंड में, वो बात आई है परमात्मा प्रकाश के 65 गाथा और 68 गाथा में कि त्रिकाली ध्रुव पदार्थ ही सारभूत है और इसके आगे क्षायिक पर्याय भी सारभूत नहीं है। सारभूत मैंने अवलंबन लेने योग्य नहीं है, क्योंकि विचलित तत्व है, तो चंचल तत्व है, तो अनित्य है। अनित्य को हम रख के क्या करेंगे, रह ही नहीं सकेगा। देखिए, हमारा स्वरूप ध्रुव होने से, यानी नित्य होने से, हमारा स्वरूप नित्य होने से हमें हर जगह नित्यता का ही अवलंबन लेना हमें सुहाता है। जैसे हम कपड़ा लेने को जाएंगे तो फट जाए जल्दी से ऐसा लेंगे नहीं, जितना मजबूत मिले ऐसा लेंगे। हाँ, मकान बनाएंगे तो साल दो साल में गिर जाए ऐसा बनाएंगे कि नहीं? हमारे पोते के पोता भी उसका उपभोग करे ऐसा मजबूत बनाएंगे। क्या कहेंगे कि हमारे मकान की नींव में तो हमने चांदी डाली है, क्या बोलेंगे? चांदी का नींव है हमारा, तो हमारा मकान गिरने वाला नहीं है। क्यों? अरे, ये अनित्य शरीर है, उसमें भी हम नित्यता चाहते हैं कि हमारा शरीर का वियोग न हो। क्या ऐसा भाव से कोई परिस्थिति नहीं बदलती, वस्तु स्थिति नहीं बदलती, लेकिन हम अनित्यता में भी नित्यता की आशा धरते हैं। जो फोगट है, झूठी है और धोखा खा जाते हैं, तो फिर हमको इसका रिएक्शन दुखाए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है कि मृत्यु के समय दुख होता है। क्यों मृत्यु के समय दुख होता है? क्या हम जानते नहीं, हमारी जानकारी नहीं है कि हरेक की मृत्यु होने वाली है? कोई शाश्वत नहीं है, कोई मनुष्य शाश्वत देखा नहीं? हमारे परिवार में हम देखते हैं, हमारे समाज में देखते हैं, दुनिया में, पेपर में तो डेली कॉलम आता है, आता है कि नहीं आता, आज किस किस की मृत्यु हुई। हाँ, हम जानते हैं, फिर भी हमने नित्यता अनित्यता में नित्यता स्थाप रखी है, वो जब हम छोड़ते नहीं है तो उसका दुख होने वाला है ही, दुख हुए बिना नहीं रहेगा। ये गलती किया है हमने, जानने से काम नहीं होता। जानते तो है, ये तो सामान्य आदमी भी जानता है कि देह अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि आत्मा इसमें से चली जाती है जब मुर्दा को अंतिम संस्कार किया जाता है, सारी दुनिया जानती है। इससे कोई आत्मज्ञान होता है क्या? कि इस तरह आत्मज्ञान नहीं होता, जानने से कोई नहीं होता। नित्यता का नित्य रूप में अनुभव करना होता है, तब अनित्यता पर जो हमारी दृष्टि है, हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है नित्यता का, वो खत्म हो जाएगा। पर जब ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है, उसका लक्ष्य तुम करो। दूसरा अनित्य पदार्थों का, अनित्य तत्वों का लक्ष्य छोड़ देना है। पर्याय परिणमती है, उसका परिणमन होने दो। उसका स्वभाव परिणमन करने का है, उसको कोई रोक सकते नहीं। एक सेकंड के लिए भी पलटन करने वाले परिणाम की पलटन को कोई रोक सकते नहीं। देखो कैसी विचित्र परिस्थिति है हमारी, कि हम मकान बनाएंगे तो कहेंगे कि हमने ये नया मकान बनाया। क्या बोलेंगे? हमने ये बिल्कुल नया मकान बनाया है। और 10 मील 7 बाद में ये पुराना दिखता है तो कोई ऐसा कहेगा कि हमने उसको पुराना बनाया। हाँ, ऐसा कोई कहेंगे? पहले नया बनाया था, अभी पुराना बनाया, ऐसा कोई नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पुराना हुआ। हुआ मतलब कि स्वयं हुआ, हमने कुछ किया नहीं। इस मकान के एक एक परमाणु प्रति समय पलटनशील है। हमारे शरीर के एक एक परमाणु पलटनशील है। हम चाहें कि हमारा बाल सफेद नहीं हो, चाहते हैं कोई? है, और डाई लगाते कि नहीं? नहीं चाहते, इसलिए तो डाई लगाने लगते। लेकिन हमारे शरीर पर तो हमारा अधिकार नहीं, हमारे शरीर के एक बाल पर भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर होता तो हम उसको सफेद होने देते नहीं। जब ये परिस्थिति है कि परमाणु स्वयं पलटता है, उसको पलटाया जाता नहीं या पलटन को रोका जाता भी नहीं, तब उसका तुम ज्ञाता हो जाओ। ये करना नहीं करने की जो वृथा परिश्रम है उसको तुम छोड़ दो, वरना आकुलता बढ़ जाएगी। इसका नतीजा ये है कि वो आकुलता बढ़ जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। और शांति से देखते, ज्ञाता दृष्टा होकर देखते रहोगे तो शांति मिलेगी। मतलब शांति से है, कुछ करने से भी शांति चाहिए और कुछ नहीं करने से भी शांति चाहिए। तो जैसे शांति उपलब्ध हो वैसा करना। क्या कहते हैं इधर? कि पर्याय परिणमती है, उसको परिणमने पर इसका परिणमन होने दो। उसके सन्मुख मत देख। क्या? परिणाम के सन्मुख तुम देखो ही मत, ऐसा कहते हैं। पहले ये भी कहेंगे कि तुम उसका अवलोकन करो, बाद में ये कहेंगे कि उसको भी छोड़ो। उसका अवलोकन में से जो ज्ञान लक्षण में, ज्ञान के उपयोग में जो ज्ञान स्वभाव है, उसकी पहचान हुई, लक्ष्य हुआ, तो परिणमन को लक्ष्य में से छोड़ दो। उसके सन्मुख मत देख, मगर उसी समय तू परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व है उसको देख। हर समय परिणाम भी पलटता रहता है और हर समय तू भी ध्रुव तत्व है। तेरा स्वरूप ध्रुव है, मूल स्वरूप ध्रुव है, असली स्वरूप ध्रुव है। तो मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण ध्रुव अपरिणामी तत्व हूं, यह बात जगत के जीवों को नहीं जचती है। क्या तकलीफ है? अनित्यता की रुचि है, इसलिए उनको नित्य की रुचि नहीं है। परस्पर दो रुचि साथ में नहीं रहती, इसलिए जगत के जीवों को आत्मा की रुचि नहीं है। मतलब क्या? कि आत्मा माने मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण ध्रुव परिणामी हूं, ऐसी रुचि नहीं होती है। ये अपूर्व है, ऐसी रुचि होना अपूर्व है। धर्म के क्षेत्र में पहले स्वरूप की रुचि होनी चाहिए, आत्मा की रुचि होनी और अनात्मा की रुचि नहीं होना, ये पहले होना चाहिए। और ये जरूरत से पैदा होती है, कल आया रात को, इसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। तो रुचि से क्या काम होता है, करुणानुयोग से देखे तो रुचि जो होती है इससे दर्शन मोह में का अनुभाग कट जाता है। क्या होता है, मिथ्यात्व की जो प्रकृति है इसकी ताकत टूट जाती है, उसको अनुभाग टूटा ऐसा कहने में आता है। ये रुचि से सबसे बड़ा जो काम होता है वो वही होता है। और जब स्वरूप निश्चय होता है, स्वरूप की पहचान होती है, उस वक्त तो स्वरूप की इतनी रुचि उमड़ करके पैदा होती है, तो उस वक्त तो जो मिथ्यात्व की प्रकृति है वो उपशम होने के परिस्थिति में आ जाती है, और आगे जाकर के उसको उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सभी को पहले उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तीन में से दो दो की प्राप्ति नहीं होती है। और प्रमाण के लोभ में ये पंडितों की बात है कि पंडितों को प्रमाण का लोभ रहता है कि अगर हम अकेले निश्चय ध्रुव द्रव का पक्ष करेंगे, उस पर जोर देंगे, तो हम निश्चयाभासी हो जाएंगे। कि शास्त्र पढ़ने वालों में जो प्रकार जो भी प्रकार की विकृतियां आती है उसमें निश्चयाभास भी है, उसमें व्यवहाराभास भी है, और उसमें प्रमाणाभास भी है, तीनों है। तीनों में से एक भी विकृति अच्छी नहीं है, ये तीनों नहीं होना। तो जो प्रमाणाभासी होता है उसको प्रमाण का लोभ रहता है। लोभ मैंने क्या कि आत्मा को यदि अपरिणामी मानेंगे तो प्रमाण ज्ञान नहीं होगा, क्या तो ज्ञान की प्रमाणता नहीं रहेगी और एकांत हो जाएगा, ऐसे एकांत निश्चयाभासी हो जाएगा, ऐसा एक भय रहता है। वो भय भी स्थान में है, ऐसा भय रहना चाहिए नहीं। स्वरूप निश्चय के काल में ये आभास होने की जो शक्यता थी, संभावना थी, वो संभावना खत्म हो जाती है। क्यों कि जिसको स्वरूप निश्चय होता है उसको क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि मेरी अवस्था में जो दोष है, अवगुण है, मलिनता है, दुख है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो अवस्था का ज्ञान तो उसको है ही। अब त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान नहीं था, तो त्रिकाली का जब ज्ञान करके अवलंबन किया, पहचान करके अवलंबन लिया, तो पर्याय का तो था ही, चला नहीं गया। तो द्रव पर्याय दोनों का वहां पहले स्वरूप निश्चय में ख्याल आ जाता है, तो वहां फिर प्रमाणाभास या कोई निश्चयाभास होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए प्रमाण के लोभ में आत्मा को यदि अपरिणामी मानेंगे तो प्रमाण ज्ञान नहीं होगा और एकांत हो जाएगा, ऐसी आड़ लगा करके, क्या ऐसी आड़ लगा करके पर्याय का लक्ष्य वो छोड़ना नहीं चाहते। अनादि से जो पर्याय का लक्ष्य है वो प्रमाण ज्ञान की प्रधानता करके वो पर्याय का लक्ष्य बना पर्याय का लक्ष्य बना रहता है। इसलिए अगर दो ही विभाग करने में आए, निश्चय और व्यवहार, तो प्रमाण किस में जाता है, निश्चय में जाता है या व्यवहार में जाता है? पद्मचंद जी, प्रमाण किस में जाएगा? प्रमाण व्यवहार में जाता है। लेकिन कोई कहेंगे कि प्रमाण में तो निश्चय भी है और प्रमाण में व्यवहार भी है, आप उसको व्यवहार में क्यों डालते, निश्चय में क्यों नहीं डालते? या तो निश्चय व्यवहार उभयात्मक हो, लेकिन उसको व्यवहार में क्यों डाल देते? तो कहते हैं कि निश्चय है, यह शुद्ध है, परिशुद्ध है, उसमें व्यवहार का अंश साथ में जुड़ता है, वो निश्चय वाला पसंद करता
नहीं
क्या बात देखो है, निरीक्षा कर सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी का आधा भरा हो तो कोई ये कह सकता है कि आधा खाली है, तो कोई ये कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है, और कोई ये कहेंगे कि आधा खाली और आधा भरा हुआ है। तीन पक्ष वाले तीन हो गए। अब कहते हैं कि जिसकी दृष्टि अस्थि पर है वो आधा भरा है, वही बात को मुख्य करेगा। ऐसे जिसकी दृष्टि ध्रुव पर है, जिसको अवलंबन ध्रुव का है, वो तो निश्चय पर ही जोर देगा, प्रमाण होते हुए भी निश्चय पर ही वो जोर देगा, ऐसा होगा। तो कोई आशावादी है, कोई निराशावादी है, कौन सा अच्छा? आशावादी अच्छा है, निराशावादी अच्छा नहीं है, ये बात है। इसमें ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट कहते हैं ना हमारे यहाँ, ये बात है उसमें। तो अनादि से जो लक्षण पर्याय का है वो व्यवहार की शुरू से अगर कोई प्रधानता करते हैं बिना अनुभव, तो उनको पर्याय का लक्ष्य छूटता नहीं है। और आगम में तो प्रमाण को पूज्य भी कहा है, क्योंकि ज्ञान प्रमाण होने से, और अध्यात्म में प्रमाण को अपूज्य कहा है, क्योंकि उसमें व्यवहार सम्मिलित है जो उपाधि नहीं है। इसलिए आगम अध्यात्म का जहां भी जो शब्द आवे उनको जैसा जहां है वैसा समझना चाहिए, नहीं तो वो भड़क जाएंगे, कह रहे गुरुदेव तो निश्चय की प्रधानता से व्याख्यान करते थे तो प्रमाण को अपूज्य कहते थे, और नए चक्र में प्रमाण पूज्य है ऐसा भी आचार्य ने कहा है। माइल धवल का जो बड़ा नए चक्र है ना, उसमें आखिर में वो चर्चा चली है शास्त्र में, तो प्रमाण को पूज्य भी कहा है, और उसकी विविक्षा भी खोली है कि उसमें निश्चय है ना, इसलिए हम पूज्य कहते हैं, प्रमाण में निश्चय होता है इसलिए हम पूज्य कहते हैं, और व्यवहार प्रमाण को अपूज्य भी हम कहते हैं क्योंकि उसमें व्यवहार है इसलिए अपूज्य कहते हैं। ऐसे दोनों विविक्षा वहां तो नई चक्र है, इसलिए दोनों साइड की विविक्षा को वहां खोली है। तो जहां जो बात चलती हो आगम अध्यात्म का अविरोध समझ करके हमें हमारा हित करना चाहिए। इसी ही कारण से वे अपरिणामी भी चैतन्य तत्व को प्राप्त नहीं होते हैं, पर्याय का लक्ष्य नहीं छूटता है, इसी कारण से वे अपरिणामी चैतन्य तत्व को प्राप्त नहीं होते। मैंने उसको स्वरूप का अपना परम पद का अवलंबन आ सकता नहीं है। मैंने वास्तव में बात यह है कि ध्रुव पद है, परमात्म पद है, निज परमेश्वर पद है, वो इतना स्वरूप से ही महान है कि इसके आगे कोई महान है ही नहीं, तो इसकी मुख्यता होना ये वास्तविकता है, पर इसकी गौणता होना ये अवास्तविकता है। इसलिए इसकी सहज मुख्यता हो तो हमें उसमें कोई अनुचितता नहीं है, इसकी गौणता होती है तभी अनुचितता होती है। तो जो उचित है उसका उपदेश दिया जाता है व्यवहारिक ढंग से कि उसको करो, तुम इसकी मुख्यता करो, लेकिन अगर इनकी अपना स्वरूप जाने तो मुख्यता हुए बिना रहे नहीं, ये वस्तु स्थिति है, ये तो वस्तु स्थिति है। यहाँ पर ये 580 नंबर का पूज्य सोगानी जी का जो वचनामृत है वो समाप्त होता है, हमारा समय भी करीब करीब समाप्त होता है।
अभी अभी आपने